आरिफ वकार साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला वैल्यू सिटी के लिए। मेरी गुजारिश आपसे ये होगी कि जो आपका ज़ाती ताल्लुक़ रहा है इंतज़ार हुसैन साहब से, और एक ड्रामा निगार की हैसियत से जो उनकी शख्सियत के और उनके फ़न के पहलू हैं, अगर आप अपनी गुफ्तगू में उसे उजागर कर सकें।
जी शारिक साहब, इंतज़ार हुसैन की अमूमी हैसियत जो है हमारे अदब में, वो तो एक कहानीकार की है। लोग उन्हें एक दास्तान को और एक कहानीकार के तौर पर जानते हैं, और वही उनकी मुस्तनद और बुनियादी हैसियत भी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जाहिर है कि वो लाहौर में रहने वाले एक अदीब थे जो टी हाउस बाकायदगी से आते थे, हल्का अरबाब ज़ौक में बड़ी बाकायदगी से उनकी आमद होती थी, तो हम नौजवान उनसे मिलते थे। मज़े की बात यह है कि इंतज़ार साहब को मैंने पहली बार हलके में उस वक्त देखा था जब मुझे पता भी नहीं था कि यह हलका क्या चीज़ है और ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। मैं तीसरी जमात में था और मैं अपनी अम्मी के साथ उनकी उंगली पकड़ के तो हलके में गया था, और मुझे बिठा दिया एक कुर्सी पे और इसके बाद कार्रवाई चलती रही। तो इंतज़ार साहब के उस वक्त बाल थे पूरे सर पे, मुझे याद है। तो उन्होंने एक एब्स्ट्रैक्ट सी कोई कहानी पढ़ी जो मेरी तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ी मुझे, लेकिन उसके बाद लोगों ने उस पर गुफ्तगू शुरू कर दी और गुफ्तगू मुझे बिल्कुल ही समझ में नहीं आई। तो नेक्स्ट संडे जब अम्मी जाने लगी वहाँ, तो मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊँगा, तो और मैं नहीं गया। उसके बाद कई बरस तक मैं हल्के नहीं गया, क्योंकि वो मेरी समझ में नहीं आती थी चीज़ें। दसवीं जमात में जब मैं था तो फिर मैं अपने तौर पे मैंने सोचा कि वो जो 7-8 साल पहले मैं अम्मी के साथ जाया करता था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन लगता है वहाँ कुछ शायद अब मेरे पल्ले पड़ जाए कोई बात। तो फिर मैंने मैट्रिक का उस वक्त इम्तिहान हो चुका था तो मैं फारिग था, तो फिर मैंने उस वक्त बोर्ड रूम में होता था हल्के का इजलास, तो बड़ी सी एक लकड़ी की गोल मेज थी क्लासिक टाइप की, उसके गिर्द लोग बैठते थे और वहाँ, तो अब मुझे समझ में आने लगी बातें, और इंतज़ार साहब की बातें भी और उनकी कहानियाँ भी और तनखीद भी लोगों की उस पर। तो वहाँ से जो सच पूछिए तो जो मेरी अदबी तरबियत हुई वो हल्का अरबाब ज़ौक से हुई, बहुत से और लाहौरी नौजवानों की तरह, क्योंकि कॉलेज के लेक्चरर्स में और लाइब्रेरी की किताबों में आपको वो बात नहीं मिलती जो आपको एक डिस्कशन में, और ये तो बहुत पुराना इस्टेब्लिश फैक्ट है अरस्तु और सुकरात के ज़माने का, कि जो गुफ्तगु में और डायलाग में जो आप सीख सकते हैं वो आप ना तो किताब पढ़ के हासिल हो सकता है ना लेक्चर में हासिल हो सकता है, क्योंकि इंटरेक्शन में सवाल जवाब में चीज़ें और बातें जो हैं मुकालमे में बातें खुलती हैं। तो वहाँ तो हर रोज़ यानी हर इतवार को ही मुकालमात फलाक चलते थे। यूँ होता था कि हल्का शुरू होता था, लोग पहले टी हाउस में जमा होते थे, टी हाउस से फिर जब टाइम हो जाता था तो उठ के वो हल्के में चले जाते थे, और जो आदि मुजरिम थे वो हल्के का जलसा ख़त्म होने के बाद फिर टी हाउस में आ जाते थे, और वहाँ एक सेकेंडरी महफिल जमती थी ज़ाती किस्म की, और वो फिर रहती थी रात गए तक, और उसमें नासिर काज़मी और इंतज़ार हुसैन और अहमद मुश्ताक, ये इनका एक मानी ग्रुप था जो बैठ के, तो हम नौजवान दुबके हुए सहमे हुए पिछली कुर्सियों पर बैठ के इनकी बातें सुनते रहते थे। इतनी तो हिम्मत नहीं थी कि अगले दायरे में आके हम उनसे बात कर सकें, लेकिन जो कुछ कान में पड़ता था वो बहुत ही एजुकेटिंग था और बहुत चश्म कुशा था, और बहुत से मोती जो हिकमत के हमने वहाँ चोरी चोरी बैठे हुए चुन लिए इन लोगों से। अच्छा, इस दौरान में क्या हुआ कि तालीम ख़त्म करने के बाद मैंने रेडियो ज्वाइन कर लिया प्रोड्यूसर के तौर पर 1970 के आखिर में। रेडियो में भी मैंने अदबी प्रोग्राम शुरू किया था और फिर वही रवायत में टेलीविज़न में भी लेके आना चाहता था। जब मैंने एक दो अदबी प्रोग्राम कर लिए तो मुझे जनरल मैनेजर बुलाया, उसने कहा ठीक है लेकिन यार तुम ऐसा करो कि इन अदीबों का सही इस्तेमाल यह कि इनसे ड्रामे लिखो, उनका अपना देखिए पॉपुलर उसमें ना जॉनरा में कुछ चीज़ होनी चाहिए। तो अदबी प्रोग्राम की व्यू बहुत कम थी, स्टूडेंट देख लेते थे, कोई प्रोफेसर टाइप के लोग दो चार देख लेते, ड्रामा लाखों की तादाद में देखा जाता था। अब वो हमने देखा कि ड्रामे तो कासमी साहब के भी चल रहे हैं, मंटो की कहानियाँ भी चल रही हैं, इशफाक साहब तो बहुत ही लिखते थे, यानी तमाम अफसाना निगार जो थे उनके ड्रामे हो रहे थे ऑलरेडी। अच्छा, इंतज़ार साहब का ड्रामा नहीं हो रहा था कोई भी, तो मैंने उनकी तवज्जो दिलाई कबाब हाउस की तरफ। मैंने कहा इसमें, अच्छा उसमें कहानी छोटी मुख्तसर से आपको बता दूं ताकि बात आगे चल सके। उसमें असल में डिक्लाइन ऑफ टेस्ट की थीम थी कि ओवरऑल हमारा जो जौक है वो
रूह का जवाल,
उसको जवाल आ गया। तो उन्होंने दिखाया कि एक सीख कबाब लगाता है गली के नुक्कड़ पे सूफी साहब, और वो बड़े लजीज कबाब होते हैं, लेकिन वो दो चार सेर कीमा लेके आते हैं सुबह, और वो सपहर में बैठते हैं और दो तीन घंटे में बेच भाज के वो घर चले जाते हैं, और बिक जाते हैं उनके दो तीन घंटे में सारे, और जो लोग लेट पहुँचते हैं वो रह जाते हैं, और दूर दूर से आते हैं लोग खाने के लिए। बाद कारों वाले भी खड़े होते हैं इंतजार में कि सूफी साहब का कबाब खाना, लेकिन वो ढाबा सा है बस सड़क के किनारे। अब बेटा उनका बड़ा हो गया, जवान हो गया और यूनिवर्सिटी में पहुंच गया, तो वो कभी गर्लफ्रेंड को या दोस्तों को लेके आना चाहता है, लेकिन उसको बड़ी शर्मिंदगी है कि बताए कि वो उनका बाप जो है वो गली में बैठ के सीख कबाब लगाता। तो अपनी माँ से बात करता है बेटा, जो कहता है वो अब्बा इतने पैसे कमा लिए इन्होंने और सारी दुनिया में इनके कबाब मशहूर हैं, तो इनसे कहे कोई ढंग का कोई होटल वोटल बनाए जिसमें कोई कुर्सियाँ हों, पंखे हों, एयर कंडीशनिंग हो, कोई चार दोस्तों को मैं भी लेके आऊँ तो बिठाऊँ वहाँ पे, मैं ज़मीन पे बिठा के किसे खिलाऊँ, मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी होती। तो ये जनाब इनसे कहते हैं कि जो पैसा अब तक जमा हुआ है उसकी ना एक दुकान खोली जाए कबाब की बाकायदा, और वहाँ कुर्सियाँ मेज़ें और बैरें हों। और ये सूफी साहब नहीं मानते, हुए नहीं मेरा तो अड्डा है इतने सालों से चल रहा है, और जिनको खाने होते हैं वो वहीं पे आके खा लेते हैं, मुझे नहीं दुकान में। अच्छा, वो बीवी भी बच्चे की तरफ हो जाती है, और बड़ा घर में लड़ाई झगड़े के बाद आखिर वो औलाद के आगे घुटने टेक देता और उनको कहता कि अच्छा भाई तुम बना लो होटल। तो ये एक वहीं पे एक खाली दुकान होती है उसको होटल में तब्दील कर लेते हैं। बैरे भर्ती हो जाते हैं सफेद वर्दियों वाले, और बड़े पैमाने पे कबाब बनने शुरू हो जाते। अच्छा, इनका वही जो पुराने असूल है कि सर पर खड़े होकर मसाला डलवाना है खुद, और अपने सामने कबाब ये से वो उनके सामने गूंधें और कीमा खुद जाके लाना है, वो किसी पे एतमाद नहीं करते। अब वो दुकान जब बनी तो गाकी और बढ़ गई और लोग ज्यादा आने लग गए। एक दिन क्या हुआ कि इसी तरह ये अपनी किसी गर्लफ्रेंड को लेकर लड़का आया हुआ है वहां क्लास फेलो को लेके कबाब खिलाने, कि इतने में क्या होता है कि कीमा खत्म हो जाता। तो कबाबिया वो बहरा के बताता है कि जी साहब कीमा खत्म हो गया। वह खत्म हो गया तो ले आओ उधर से, कहते हैं जी सूफी साहब किसी को नहीं लाने, वो खुद लाते। सूफी साहब को इस वक्त कहाँ से लेके आएंगे, वो तो चले गए घर। तो कहते जी वो तो चले जाते हैं 8 बजे बंद करके। वो कहते बस जब कहता अच्छा, अब इसको बड़ा गुस्सा, इतने में वो लोग बर्तन बजाने लग जाते हैं मेज़ों पे, फिर और कबाब चाहिए और चाहिए और चाहिए। फिर इसकी वो क्लास फेलो भी आई हुई है वो भी, तो ये क्या करता है कि वहाँ से जाके जल्दी से ना वो कोई उल्टा सीधा चिचड़े विचड़े कुटवा के ला के अंतराम डालो इसमें मसाला चीज। अब उनको पता चल जाता सूफी साहब को फिर मेरे ढाबे पर ये हो रहा है, वो पहुँच जाते वहाँ के, देखते हैं ये क्या, ये चिचड़े कौन लाया, ये इस जगह पे, ये मेरी दुकान पे ये कबाब नहीं है, फेंको इसको बंद करो। अब जनाब बाप बेटे का ना कन्फ्यूज, यहाँ पे आता है क्लाइमैक्स, और बाप लड़के और बेटा मतलब बदतमीज हो जाता। तो बाप को इतना गुस्सा और इतना दुख और अफसोस कि वो वहाँ से चला जाता है घर, और घर जाके अपनी बीवी से कहता है कि बस मैंने होटल छोड़ दिया, आप ये खुद ही चलाएं चला रहा। तो यहाँ पे पहुंच गया, लगता है कि वो जो सूफी चला गया जिसके दम कदम से सारा वो मेयार था कबाबों का, तो ये होटल बंद हो जाएगा। तो डिक्लाइन ऑफ टेस्ट की कहानी ये है कि वो होटल उसी तरह चलता रहता है, आवाजें पड़ती रहती हैं, लोग थालियां बजाते रहते हैं और कबाब आते रहते हैं चीचड़ों के और लोग खाते रहते हैं। और आखिरी मंजर ये है कि वो जो सूफी है वो अपनी चार सीखें लेके उसी अड्डे पे वापस चला जाता है और वहाँ उसी तरह कबाब लगाना शुरू कर देता। तो आखिरी मंजर में दिखाया कि एक बाप बेटा गुजर रहे हैं, तो बेटा कह रहा है अब्बा कबाब खाना, बोला बेटा ये तो यहाँ तो गर्द और मक्खियाँ और बकवास है, मैं तो कबाब हर से खिलाता हूँ। तो वो वहाँ ये सूफी को छोड़ के वो एक जंगल ट्रेंड की ये नुमाइंदगी कर रही थी। ये था یہ تھا وہ کھیل کباب ہاؤس, اور اصلی جو صوفی ہے اصلی کباب وہ فیل ہو جاتا ہے,
ریئل ویلیوز پیچھے رہ جاتی ہیں, اور جو
پبلسٹی اور دھوم دھڑکا اور وہ جو شوشا ہے وہ آگے چلے جاتی. اچھا اب یہ جناب پلے تو لکھوا لیا ہم نے انتظار صاحب سے اور انہوں نے لکھ دیا. اب جب اس کو کرنے کے لیے وہاں ریہرسلیں شروع ہوئیں ٹی وی اسٹیشن پہ, تو قمر آفتاب جو ڈرامے کے آدمی تھے اور اس وقت جنرل مینیجر بھی تھے, وہ بار بار بے چینی سے ٹہلتے ہوئے کہہ رہے یار کنفلکٹ نہیں بنا یار, وہ جو ٹکراؤ ہونا چاہیے اس کا مزہ نہیں آ رہا. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ ایکٹر تھے نا بدیو زمان تھے, والد بنے ہوئے اور شاہ نواز ان کا بیٹا بنا ہوا تھا, تو شاہ نواز سے کہا یار ذرا ذرا بدتمیزی دکھاؤ یہ آج کل کے نوجوان جس طرح نا, تو ڈائلاگ وائلگ بھی کچھ اضافہ کر دیا اس میں, اور نہیں بس یہ جہاں تک سینسر اجازت دیتا تھا مہذب سی گالیاں والیاں بھی ڈال دیں اور کر کے نا, تو اس کو لڑائی جھگڑے کو پیک پہ پہنچا دی. تو اچھا جی ڈرامہ تو وہ ہو گیا ہٹ
جی,
لیکن انتظار صاحب کو بڑا غصہ,
وہ اچھا وہ بالکل
وہ ناراض وہ تو ٹیا میں ملنے میرا خیال تھا میں تعریف سمیٹنے گیا کہ بڑی تعریف, تو وہ تو مجھ سے بات ہی نہ کر. تو آخر میں جب میں نے پوچھا جا کے کہ انتظار صاحب تو آپ ناراض ہیں, تو کہنے لگے آپ نے جو باپ بیٹے کا سین دکھایا وہ عارف وقار کا اور وقار امبالوی کا سین ہو سکتا ہے, لیکن انتظار حسین اور اس کے باپ کا سین نہیں ہو سکتا. کہنے لگے تو کہیں گے دیکھو ہم اپنے والد اور چچا اور تایا کو جوتوں سے پہچانتے تھے, ہم نے کبھی یوں کرتے نہیں اور آپ نے آمنے سامنے وہ تہذیب پوری لے کے آئے اور ہم پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہم نے دھن دھڑکا اور ہم نے مار کٹائی اور مطلب بڑا نیکڈ قسم کا ڈرامہ بنانا چاہ رہے تھے کہ نیکڈ کنفلکٹ ہو بالکل آمنے سامنے
تاکہ پاپولیرٹی زیادہ آئے, ظاہر ہے اس کی ویوئنگ زیادہ ہوگی,
اور اوپر سے جو سپروائزر ہمارے جنرل مینیجر وہ ہم سے بڑھ کے
وہ آ گیا
کانفلکٹ کے قائد. تو انتظار صاحب بہت ناراض, تو وہ ہماری ساری محنت ویسے تو سفل ہو گئی لیکن رائٹر کے نقطہ نظر سے وہ کارن گئی. تو بہت پھر عرصہ لگا انتظار صاحب کو بنانے میں. اس وقت پھر احساس ہوا کہ ظاہر ہے وہ ایک تہذیب جو ساتھ لے کے آئے ہوئے ہیں اتنے برسوں کی اور ان کی مطلب جو خون میں موجود ہے, تو وہ ایک پلے کی خاطر اس سے تو دستبردار نہیں ہوں گے, تو چاہے وہ کامیاب ہو پلے یا ناکام ہو. تو یہ بڑا ہے کہ میری زندگی کا ایک سبق آموز واقعہ
ہے, بہت اچھا واقعہ ہے بالکل. اور اس کو کہنا چاہیں انتظار حسین صاحب کا جو مزاج تھے,
ان کا مزاج, ان کی شخصیت,
ان کی جو شخصیت ہے وہ بھی بہت اجاگر ہوتی ہے.